ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கலாசாசமிக்கு பஞ்சம பீட்டாதீஸ்வர பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்புரி ஜி மகாராஜ் ஜி கே சம்ஸ்மரன் சி சம்ஸ்தாபித அத்தியாத்ம வித்யாபவன் மும்பை மே பிராத சுவாத்தியாய பிரவச்சன காரியக்கிரம மே அபி சல் விசேஷ காரியக்கிரம சாந்தோக உபனிஷத் ஜான யஜ்யம். ஸ்வேதகேது நாமக அருணக புத்திர ராஜா கே சபா மே பஞ்சால ராஜா மே உபஸ்தித் ஹோகியா தோ ராஜா நே உஸ்கோ பாஞ்ச பிரஷ்ன புச்சா தோ உஸ்கே தோடே अभिमान था उसकी निवृत्ति के लिए पूछा, पांच प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। फिर पिताजी के पास गया तो पिताजी से कहने पर पिता स्वयं आ करके उनके पास शिष्यत्व ने रह करके ये पंचाग्नि विद्या का उपदेश ग्रहण किया। इसमें पंचम प्रश्न था, पंचम्या आहुतो आप पुरुष वचस भवन्ति इति। पंचमी आहुति में जल कैसे पुरुष संज्ञक होता है, यहाँ प्रथम मंत्र चलेगा। इति तु पंचम्या आहुता आप पुरुष वचस भवन्ति इति स उल्वाहुतो गर्भोदश वा नववा मासानंत शयित्वा यावद्वाथ जायते। पांच अग्नि पंचाग्नि, अनग्नि में अग्नि चिंतन करने के लिए, अग्नि भिन्न में अग्नि बुद्धि करके उपासना। प्रथम द्यूल स्वर्गलोक अग्नि है, द्वितीय में पर्जन्य अग्नि है, तृतीय में पृथ्वी अग्नि है, चतुर्थ पुरुष अग्नि है और पंचम है योषित स्त्री अग्नि। स्त्री में जब गर्भ होता है तो पंचमी आहुति में, पहले प्रथम आहुति तो श्रद्धा, अग्निहोत्र आहुति देता है यजमान श्रद्धापूर्वक, दुग्ध दधि सोम घृत आदि जो आहुति देता है उसमें जलांश अधिक है, श्रद्धा से देता है, उसको आप शब्द से जल शब्द से कहा, उसका परिणाम जाता है ऊपर स्वर्गलोक में, देवताला को उसी को श्रद्धा रूप को जल को हवन करते हैं द्यूलोक अग्नि में। जो जल रूप है, क्योंकि दुग्ध दधि घृत सोम जितने सब जलांश अधिक है उसको आप जल शब्द से कहा, इसी जल शब्द श्रद्धा पूर्वक देने से प्रथम आहुति श्रद्धा को देवता लोक दे, इंद्रिय यजमान की इंद्रिय अभिमानी देवता द्यूलोक अग्नि में हवन करते हैं। इसी प्रकार पंचम आहुति में गर्भ में शिशु जात होता है तो पुरुष वचस पुरुष संज्ञक हो जाता है। जो पहले प्रश्न पूछा था पंचमी आहुत पुरुष वचस भवन्ति आप, पंचमी आहुति में पुरुष संज्ञक होते कैसे जानते हो, तो उसका उत्तर है इतु इस प्रकार पंचमी आहुति में आप जल पुरुष वचस भवन्ति, जल ही पुरुष संज्ञक हो जाते हैं, गर्भ में शिशु पुरुष जीव होता है। इति स उल्वावृतो गर्भो, गर्भ में जब शिशु आता है उल्व से आवृत, उल्व है जरायु गर्भवेष्टन, गर्भ को वेष्टन कर ढाक कर रखने के लिए जरायु होता है, उल्वे ने ढका गया विस्तृत होकर रहता है, गर्भ रहता है दसवा नववा मासान अंत सहित, दस मास अथवा नौ मास कहीं कम ज्यादा भी होता है रह करके, अंत सहित अंत रह करके यावदवा अथवा जितना कम ज्यादा भी होता है अथ जायते उसके बाद जन्म होता है, कभी कम ज्यादा भी होता है। उल्वावृत कहा गया गर्भायु से जरायु से विस्तृत होकर के गर्भ में किस प्रकार रहता है विचार करें। गर्भ उपनिषद में भी आता है, गर्भ में रहता है बहुत कष्ट में रहता है, माता के गर्भ में और बहुत अशुच अपवित्र स्थान में रहता है, मूत्र पुरुष मलमूत्र वात पित्त श्लेष्म वात पित्त खपत है ही, सुसे लिपटा हुआ अशुचि जो जरायु है वो भी अपवित्र है, उससे ढका गया। और बीज उसका है शुक्र सुनी तो उससे ही उत्पन्न हुआ शरीर। माता पिता ने खाया, खा पिया, खान पान किया, उसमें माता जब खाती उससे वीर्य रोहित बना। अन्न भक्षण करने से रक्त आदि होकर के वीर्य होता है, उस बीज से उत्पन्न हुआ। और माता जो खाती पीती है उसमें शरीर बढ़ता है, उसकी शक्ति बल वीर्य तेज कुछ नहीं, चेष्टा से ही रुका हुआ जैसे बंधा हुआ। और जब निकल चलते फिरते भी माता को कष्ट होता है, बच्चे को कष्ट होगा, उसको कुछ कहने का नहीं, कष्ट इसे सहन करना है। और यदि प्रसव के समय में बहुत कठिन से निकलता है, माता को कष्ट होता है तो चिकित्सा करके निकालते हैं। उसी रास्ता से जब आता है, जितने जोर पड़ता है माता को, बच्चे के ऊपर भी इतने जोर पड़ता है, उसके भी कितने कष्ट होता है, तो भी वो कुछ नहीं, कष्ट सहन करना है। तो ये जो पेट में कैसे रहता है विचार कर देखेंगे, एक क्षण भी सहन करना नहीं होता है, इतने कष्ट से रहता है उसमें। थोड़े समय 9-10 मास रहता है बच्चा, दीर्घ काल रहता है। ये सब विचार करने से वैराग्य होता है, वैराग्य होना चाहिए। गर्भ उपनिषद में आता है, बच्चा गर्भ में रहता है, प्रार्थना करता है भगवान से, किसी प्रकार मुझे इसमें से मुक्ति दे दो, आगे मैं पूरा भजन करूंगा, जिससे दोबारा गर्भ में नहीं आऊं। गर्भ में कष्ट होता है, भगवान से उस सब उसको मालूम रहता है। भजन कर गर्भ उपनिषद देखे बहुत प्रार्थना करता है, पहले मैं भजन नहीं कर पाया, गलती हुई, अब इस बार जन्म लेने के बाद भजन करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपको प्राप्त करूंगा, बहुत प्रार्थना करता है भगवान से। कष्ट बहुत होता है, कष्ट जो बहुत होता है तो सब जितने नास्तिक भी हो कुछ नहीं मानता है, कष्ट आने पर फिर भगवान को याद करता है। और कोई दूसरा रक्षा करने वाले नहीं है, किंतु गर्भ से जब प्रसव होकर के बाहर आ जाता है, गर्भ में रहते समय जो प्रतिज्ञा की थी, भगवान से प्रार्थना की थी, वो सब विस्मरण याद स्मरण नहीं होता है। और आने के बाद जो दिखता है, फिर वही मेरे माता पिता, यह मामा, इधर मैं, ये सब संसार में आ गया, उसको भूल जाता है। यदि उस याद रहे तो जन्म होने के बाद गर्भ में मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या करूं सोचता, वो सब कुछ नहीं। इसके जन्म गर्भ में कितने कष्ट, उसके पहले क्या कष्ट भोगा था, कितने जन्म चलेगे, क्या क्या भोग हुआ, कितने कष्ट सहन किया, कुछ नहीं पता चलता है। अभी देख करके फिर उसमें ही माया से मोहित होकर के ये मेरा मैं इसे करके फिर संसार में भटकता है। फिर निश्चित कर्म करता है, शास्त्र भी तो कर्म कोई करता है, कोई निषिद्ध कर्म करता है तो पाप होता है, फिर पाप कर्म पर भोगने के लिए जाता है, नरक आदि को प्राप्त करता है, पशु पक्षी अन्य में जाता है, ऐसे ही संसार सागर में डूबा हुआ है। सजातो यावद आयुषम जीवती तम प्रेतम दिष्टमितो अग्नय एव हरंती यते वे तो यतः संभूतो भवति। आगे गर्भ से जन्म हुआ रहता है, यावद आयुषम जीवती, जब तक आयु है तब तक जीवित रहेगा। एक क्षण पूर्व में एक क्षण के बाद नहीं, आयु प्रारब्ध है तो जीवित रहेगा। बहुत लोग भय करते, सब लोग मृत्यु से तो भय करते ही, मृत्यु से भय होता है सबको, क्योंकि मृत्यु काल में इतने कष्ट होता है। जन्म के समय जो कष्ट होता है वो कुछ नहीं है उसके हिसाब से, मृत्यु काल में इतने कष्ट होता है तो मृत्यु के नाम से सब डरते, छोटे बच्चे भी कहीं गिर जाकर डरता है। मृत्यु सहस्र बिच्छू विश्चिक दंशन, बिच्छू एक बिच्छू दंशन किसको होता है तो उस समय अनुभव करने वाला जानता है, दूसरे को पता नहीं चलेगा कितने कष्ट होता है। कुछ दवाई करे, झाड़ फूंक करे, कुछ भी करे, 24 घंटा तक उसका कष्ट सहन करना पड़ता है। एक बिच्छू बहुत कष्ट होता है, और 1000 बिच्छू दंशन हो वो तो प्राण जाते समय भी इतने कष्ट नहीं होगा, इतने कष्ट है, बहुत कष्ट होता है। ये मृत्यु के समान, मृत्यु के इतने कष्ट होता है, एक सहस्र बिच्छू दंशन होने पर जितने कष्ट है मृत्यु के समान, जितने सत्य व्यक्ति हो ग्रंथि से प्राण निकल कर जाता है, हाथ पर छिटकाता है, बहुत कष्ट होता है। तो जब भय करते सब, किन्तु निश्चिंत रहने का है, मृत्यु को साथ में लेकर आता है, मृत्युर्देहवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। ये देवकी कहती कंस को, जो कंस को मारने के तैयार हो गया, तो कि मृत्यु तो देह के साथ जन्म लेता आती है, आज हो 100 साल के बाद हो, प्राणियों के तो मृत्यु अवश्यंभावी है। देह के साथ मृत्यु, मृत्यु को अपने भाई समझना, जो साथ है ना सहज, देह जब आया उसके साथ मृत्यु भी है, वो दिखती नहीं, साथ में है, और वो साथ होने से उसको अपने भाई समझ करके हमेशा उसको स्नेह करे, याद करे, भूले नहीं। आप भले भूल जाओ, मृत्यु आपको नहीं भूलती है। जैसे कोई गला को पकड़ रखा है ना, ऐसे करके रखा है, जब चाहे बस स्विच लगा दिया तो गया। अब भूल जाते हैं तो डरते हैं, जब याद रखे तो भय करना नहीं, हमेशा ही उसको याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। देह न सहज आए थे, व्यास जी कहते अद्यवाब्द शतांतिवा, आज हो 100 साल के बाद हो, मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, प्राणियों के जीव के तो मृत्यु अवश्य भावी है, उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, साक्षात्कार हो जाए पर ब्रह्म, तो मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय हो जाता है, नहीं तो मरना तो अवश्य है। इसलिए जब आयु है तब तक है, आयु समाप्त होने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आयु समाप्त होने के पहले मृत्यु होगी नहीं है, निश्चिंत रहना चाहिए। और मृत्यु के लिए हमेशा भय करने का नहीं, जब समय आएगा जाना ही निश्चित है, उसको याद रखे, कभी भी हो सकता है, आ सकती है एक क्षण में। यावद आयुषम जीवती, जब आयु है तब तक तो जीवित रहता है। ये जीवन योनि प्रयत्न कहते, ये प्राण में कुछ प्रभुत्व निवृत्त होता है, ये जो श्वास वायु चलता है इसको कहते जीवन योनि, जीवन का कारण। जब तक तो प्रारब्ध कर्म ही श्वास चलता रहता है, उसको कौन चलाता है, या उसको जो बंद हो जाए तो कुछ चला नहीं सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर थोड़े समय कुछ करेंगे, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, क्या जितने चलाना प्रयास करेंगे तो नहीं चलेगा। तो जब तक आयु चलता है जीवन योनि प्रयत्न, प्रारब्ध समाप्त हो गया तो श्वास जाना आना बंद हो गया, तब जब मर जाता है तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरंती। दिष्टम कर्म ने निर्दिष्ट, जिस परलोक को जाएगा मर जाने पर, तब जब कर्म किया है तो कर्म के अनुसार जाएगा। अग्नय हरंती, अग्नि संस्कार करने के लिए, अग्नि में उसका संस्कार करते अंत्य कर्म, अग्नि में लेकर उसको जो दाह करते हैं, यहां से स्मशान के ग्राम से अग्नि के लिए ले लेते हैं। कहां लेते हैं, यत एव इतो, जहां से आया था, जहां से आया था अग्नि से ही आया था, अग्नि से आहुति आदि क्रम से ऊपर पंचाग्नि में जा करके गर्भ में आया था, अग्नि आहुति आदि क्रम से अग्नि से आया था। और यत संभूत, जिसे उत्पन्न हुआ, 5 अग्नि से ही उत्पन्न हुआ, इसी से वो अग्नि में के लेते, अंत में अग्नि जन्म के समय अग्नि के कुछ करते हैं, तापते हैं, और अंत में अग्निहोत्र करता है, तो अग्नि में को लेते हैं, उसी अग्नि में जाता है जिस अग्नि से आया था, अपने कारण अग्नि में जाकर संस्कार हो जाता है, दाह करते, उसके बाद अंत्येष्टि कर्म करते हैं। तद इत्थम विदुः ये चेम अरण्ये श्रद्धा तपैत्युपासते ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति अर्चिषु अहरन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षादियान षड् गुदंग इति मासांस्तान मासेभ्य संवत्सरं संवत्सराद् आदित्यम आदित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एनान् ब्रह्म गमयतेष देवयानः पन्था इति। तद ये इत्थं विदु, ये जो जानते हैं, वेत्थ यदि तो वधा प्रजा प्रयन्ति, ये प्रश्न अभी प्रथम प्रश्न, 5 प्रश्न में से पंचम प्रश्न था कैसे श्रद्धा रूप जल पंचमी आहुति में पुरुष संज्ञा को हो जाता है, ये कहा। आगे किस प्रकार यहां से प्रजा जाते हैं तुम जानते हो, प्रथम प्रश्न था उसको कहने के लिए। इत्थम विदु, ऐसे जानते हैं, उपासना करते हैं, लोक में किस प्रकार आता है, कैसे कर्म करके द्युलोक आदि अग्नि से द्यु पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री इसी रूप में अग्नि होकर के गर्भ में आकर के फिर जन्म लेते हैं। ऐसा पंचाग्नि का चिंतन उपासना जो करते हैं, पंचाग्नि का उपासना पांच अग्नि का चिंतन। प्रथम अग्नि क्या है? पृथ्वी। सुनकर बोल तू कोई यदि नरक भी कहते तो नरक भी बोल दो। प्रथम अग्नि क्या है? द्यूलोक असौलोक वाव गौतम अग्नि स्वर्गलोक द्यू है अग्नि। द्वितीय अग्नि है पर्जन्य, पर्जन्य वृष्टि अभिमानी देवता, वृष्टि उपकरण अभिमानी देवता। तृतीय अग्नि है पृथ्वी, वृष्टि पृथ्वी में होती। और चतुर्थ अग्नि है पुरुष, उसमें वृहवादी होकर के पुरुष है। पंचम अग्नि योषित स्त्री। ये पांच अग्नि, कोई अग्नि नहीं अग्नि से भिन्न, इस प्रकार अग्नि चिंतन करना पांच अग्नि पंचाग्नि। सब लोग इस प्रकार जो अग्नि होता आहुति देता है, श्रद्धा होकर के जाकर के स्वर्ग में द्यूलोक अग्नि में यजमान के इंद्रियाभिमान देवता हवन करते हैं। ये पांच अग्नि उपासना करने वाले पंचाग्नि उपासना के लिए फल कहते हैं। और ये इमे अरण्य श्रद्धा तपेत उपासना है। अरण्य से उपलक्षित होने से वानप्रस्थ हो सन्यासी हो श्रद्धा तपेत उपासते, श्रद्धालु होकर के और तपस्वी श्रद्धालु तपस्या उपासना करते तत्पर होकर के, वो भी वो पंचाग्नि उपासक भी उत्तरायण मार्ग में जाते हैं। और जो वानप्रस्थ सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। ये सब ते अर्चिसम अभिसंभवंती, जब दाह संस्कार होता है अर्चि ज्वाला प्रकाश रूप अर्चिर अभिमानी देवता को जाते हैं। अर्चिसो अहर, अर्चि अभिमानी देवता से अहर दीन, ये दीन आज जितने है मार्ग का नाम आया ये सो अभिमानी देवता। अर्चिस दीन अभिमानी देवता अन्ह आपूर्यमान पक्षम, आपूर्यमान पूर्ण होने वाले पक्ष शुक्ल पक्ष, आपूर्यमान शुक्ल पक्ष में चंद्र कला का की वृद्धि होती है, कृष्ण पक्ष में ह्रास होता है। पुण्यमय के बाद कृष्ण पक्ष है, पुण्यमय में पूर्ण चंद्र है, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा द्वितीय तृतीया में एक एक कला का ह्रास होते होते अमावस्या में चंद्र है नहीं, और अमावस्या का प्रतिपदा द्वितीय तृतीया में एक एक कला की वृद्धि होती। इसलिए आपूर्यमान पक्ष हो गया शुक्ल पक्ष जिसमें पूर्ण होता है चंद्र। आपूर्यमान पक्षात यान षड उदंग इतिमाशान तान, छह उत्तरायण समय है मकर संक्रांति आगे यान सभी पक्षान षड उदंग इतिमाशान छह है जिसको उधर उत्तरादिश में जाते हैं सूर्य जाते हैं षड उत्तरायण समय मासेभ्य संवत्सरम, और ये उत्तरायण मास छह महीना से अभिमानी देवता उनसे संवत्सर एक वर्ष काल अभिमानी देवता संवत्सर अभिमानी देवता संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर से आदित्य को ये उत्तरायण मार्ग में आया। आदित्या चंद्रमसम, आदित्य से चंद्रमा को जाते हैं। यह जो चंद्रमसम कहा गया जो चंद्र दिखता है वो नहीं, जो चंद्र दिखता है वो दक्षिणायन मार्ग में आएगा। ये जो आदित्य के बाद चंद्र है ये चंद्रलोक अलग आदित्य के ऊपर, एक चंद्र है दक्षिणायन मार्ग में आएगा वो आगे कहेंगे जो चंद्र दिखता है। और यह जो चंद्रलोक इसमें आया आदित्य के बाद वो चंद्रलोक अलग है। चंद्रमस विद्युतम विद्युत लोक, विद्युत लोक तक जो जीव चला जाता है पुण्य कर्म क्या है उपासना क्या है तब पंचाग्नि उपासना करे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तप श्रद्धा सन्यासी हो वानप्रस्थ। सन्यासी का जिसको ज्ञान हो गया नष्ट ब्रह्मचारी कोई भी ज्ञान हो गया तो उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, यही लीन हो जाते हैं, उनमें तो मार्ग की आवश्यकता नहीं। जहां मार्ग से जाएंगे वहां शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। जो उपासना करके ब्रह्मलोक जाते हैं स्वर्ग जाते हैं इसी उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। तो संवत्सर के बाद आदित्य, आदित्य चंद्रमा से विद्युत लोक होने के बाद वहां तत्पुरुष अमानव, एक अमानव पुरुष मनुष्य संबंधी होता मानव, वहां ब्रह्मलोक से पुरुष कोई आता है स एनान ब्रह्म गमेति, इनको ब्रह्मलोक को प्राप्त करा लेता है। ऐसा देवयान पंथा इति, देवयान मार्ग देवताओं का मार्ग है ये पंथा, ये उत्तरायण मार्ग कहते हैं। जो सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं वो भी इसी उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं। ये प्रजा ईशिरे धीरा ते श्मशानानि भेजिरे, ये प्रजा नेशिरे धीरा ते मृत तम भेजिरे। ऐसे पुराण में आया, जो प्रजा पुत्र आदि इच्छा करते हैं तो श्मशान को जाते हैं, आगे उत्तरायण दक्षिण मार्ग को जाएंगे। ये प्रजा नेशिरे पुत्र इच्छा नहीं करता था तो सन्यासी नष्ट ब्रह्मचारी है, तो ज्ञान प्राप्त करते तो अमृतत्व भेज रहे, अमृतत्व प्राप्त करते हैं। यदि ज्ञान नहीं होता है तो आश्रम धर्म पालन करने से, सन्यास आश्रम धर्म पालन करने से, नष्टिक ब्रह्मचारी अपने आश्रम धर्म पालन करता है, ज्ञान नहीं होता है तो ब्रह्मलोक जाता है। ज्ञान होने पर तो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो ज्ञान नहीं हो तो भी आश्रम धर्म उपासना के द्वारा उपासना करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में होकर के भी जो पंचाग्नि उपासना करते हैं, अन्य उपासना करते हैं, हार्द ब्रह्म उपासना कोई करे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। किंतु ज्ञान हो जाए तो सबके लिए, किसी के लिए कोई भेद नहीं, ज्ञान होते ही सब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता है। यहां उत्तरायण मार्ग बताया, जो उपासना करके ऊपर जाते, तयोर्ध्वमायन अमृतत्व में कहा, उत्तरायण मार्ग से जाकर एक अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह जो अमृतत्व है आत्यंतिक अमृतत्व नहीं, आपेक्षिक। अन्य लोग शीघ्र मरते हैं, स्वर्ग में पितृ लोग जो जाते हैं दक्षिणायन मार्ग से शीघ्र वापस आते हैं। और विद्या देवलोक उपासना करके देवलोक स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं, वो शीघ्र नहीं आते हैं। अजरा अमरा देवा, देवता को अजर अमर अमर कहते हैं। मृत्युलोक में जिस प्रकार जल्दी जल्दी मरते हैं, ऐसे स्वर्ग से नहीं आते हैं। स्वर्ग से में तो मृत्यु स्वर्ग में होती ही नहीं, बर्फ जैसे स्वर्ग पिघल जाता है। पितृलोक से दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले जो शीघ्र आते हैं, इसी प्रकार उत्तरायण मार्ग में जाने वाले शीघ्र नहीं आते हैं। इसे अमृतत्व ब्रह्मलोक जाते तो अमृतत्व का अमृतत्व आपेक्षिक अमृतत्व शीघ्र नहीं आते हैं। वहां रह करके जिनको हार्द ब्रह्मादि उपासना करके ब्रह्मलोक जाते हैं, वहां ज्ञान हो जाएगा तो क्रम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और ज्ञान नहीं होने पर फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, अत्यंतिक मुक्त नहीं है। तो वहां ऐसे जा करके सगुण उपासक अमृतत्व को प्राप्त करते, साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भ उपासना करने वाले वहां जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। अथ इमे ग्रामे इष्टा पूर्ते दत्तमितुपासते ते धूम अभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रिरपर पक्षम अपर पक्षादियान सडंग दक्षिणातिमाशांतान नैते संवसरम अभिप्राप्नुवन्ति। जो ग्राम में रह करके गृहस्थ इष्टापूर्ते, इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते, इष्टकर्म पूर्तकर्म और दत्तकर्म कर्म है। केवल गृहस्थाश्रम में रहने पर दक्षिणायन से पितृलोक जाएंगे नहीं, इष्टापूर्त दत्तकर्म। इष्ट है अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमिति अभिधीयते। अग्निहोत्रम तप शैत्यम वेदानां चानुपालन वेद अध्ययन और आतिथ्यम वैश्वदेव कर्म, इसको कहते इष्ट कर्म। पूर्त कर्म होता है वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान आराम पूर्तमित अभिधीयते। वापी बावड़ा कूप तड़ागादि जलाशय देवतायतन, देवतायतन मंदिर आदि, और अन्न प्रदान अन्नदान आराम रास्ता में जाने वाले पुष्प वटिका आदि, और कहीं के पुष्प वटिका बनते आराम करने के लिए स्थान बनाते हैं, इसको कहते पूर्त कर्म। इष्ट और पूर्त और एक दत्त, शरणागत संतानं भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी चानम दत्तमित अभिधीयते। शरणागति की रक्षा करना है, ये दत्त में आया। दत्त तो सबसे दान में बड़ा दान है अभय दान, अभय दान सबसे बड़ा दान है। ये तो देश अति जो समर्थ है, मां भई इसी रीति बाती भय नहीं करो, अभय प्रदान सबसे बड़ा है। और बाकी अन्नदान कन्यादान विद्या प्रदान ये सब दान है। तो यहां दत्त है, दान कौन सा दान है, यहां दत्त में शरणागत संतराणाम भूतानां चाप्यहिंसनम, ये दत्त में आया भूतों की हिंसा नहीं करना, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। और वहिर्वेदीय यदानम दत्तमित अभिधेयते, वेदी के बाहर जो दानम, वेदी अर्थात किसी कर्म करते समय कर्म के अंगभूत कुछ दान करना होता है, कर्मांगभूत जो दान है वो तो कर्म का फल जितने उसी कर्म के फल में अंतर्भूत हो गया, उसका अलग नहीं, कर्मांग नहीं, वो अलग जो दान है उसको कहते दत्त में लेते हैं। कर्म करते समय कुछ देना दक्षिणा देना होता है, दान करना पड़ता है, एक कन्यादान भी कर्म है, कन्यादान करने से बहुत फल है, निष्काम करता है तो वो भी परमात्मा की प्रीति का साधन है। इसे जिनकी कन्या नहीं, कन्या ला करके भी विवाह करके दान करते हैं, और कन्यादान के साथ उसका अंग रूप है। कन्यादान करने वाले को ब्राह्मण लोग पूछते हैं, जो जानते हैं, नहीं जानने वाले तो क्या करेंगे, वो तो एक घंटा दो घंटा में कहेंगे शादी करा लो, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं, ब्राह्मण को समय नहीं देते कर्म करने के लिए, वो ब्राह्मण भी भूल जाते हैं, वो फिर जैसे चलता है कि माला पहना दो, अग्नि जला करे, थोड़ा सा आहार सागर गीते आउते रहो, परिक्रमा कर लो, बस हो गया।